मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 19 दिसंबर 2016 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी हो रही है, विशेषकर मित्रों, स्वागत करते हुए अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान ऊर्जावान साथियों के नाम हैं लव कुश वर्मा, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, संदीप कुमार, आप दिल्ली से हैं, अमित कुमार, आप सीतापुर उत्तर प्रदेश से हैं, करिश्मा परिहार, आप आगरा उत्तर प्रदेश से हैं, अमर सिंह भिंड मध्य प्रदेश से हैं और रविंद्र कुमरावत, आप खरगोन मध्य प्रदेश से हैं। तो लव कुश, संदीप, अमित, करिश्मा, अमर और रविंद्र, आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जब मैं 19 दिसंबर का जब मैंने जैसे ही उच्चारण किया, मेरे शरीर में एक हल्की सी सिहरन सी हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। क्या 2 दिनों के बाद आप लोगों से फिर से मिलने का यह रोमांच था या कि कुछ और? फिर मैंने सोचा कि नहीं, हर सप्ताह के बाद ये 2 दिन का गैप आता है, तब तो ऐसा नहीं होता था, आज ऐसा क्यों हुआ? लेकिन मित्रों, दिमाग में एक उत्तर सूझा। मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस 19 तारीख का संबंध कुछ और बात से हो। और अचानक दिमाग में एक आवाज आई कि हां, 2 महीने के बाद की जो 19 तारीख होगी वो बिल्कुल डिफरेंट तारीख होगी। उस दिन मैं आप लोगों से किसी रिकॉर्डेड वॉइस के द्वारा बात नहीं कर रहा हूंगा, बल्कि मेरे सामने वो पूरे देश के आए हुए नौजवानों का वो सैलाब होगा जो अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं 19 फरवरी 2017 की। मित्रों, केवल 2 महीने रह गए हैं, सीधे सीधे एग्जैक्ट 2 मंथ्स। जब इतने बड़े समूह के सामने मैं आप सबसे प्रत्यक्ष रूप से बात करूंगा, और वे 15 दिन तो कुछ अद्भुत और अलग और बड़े मेमोरेबल दिन होते हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि आप सब भी उन अविस्मरणीय दिनों को याद करेंगे, बशर्ते कि 15 दिनों का आप सही इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, मेरा एक ही अनुरोध है, बस बाकी आप सब एकेडमी पर छोड़ दीजिए, आप अपनी मानसिकता बनाकर आइए, बस दैट्स ऑल। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो टॉपर होता है और जो अंत तक सेलेक्ट नहीं होता, सारे अटेम्प्ट पूरे करने के बाद, रात दिन पढ़ाई करने के बाद, एक टॉपर है, एक जो कभी सेलेक्ट नहीं होता, उन्हीं किताबों को पढ़ता है। सच पूछिए तो उन्हीं कोचिंग में भी वो पढ़कर आया होगा, वही पेपर्स होते हैं, सबका मूल्यांकन भी एक ही तरह के परीक्षक करते हैं। इसके बावजूद ऐसा क्या होता है कि एक का सिलेक्शन हो जाता है, टॉप कर जाता है और दूसरे का सिलेक्शन ही नहीं होता? कहां है वो सफलता की कुंजी, कहां है उसका रहस्य? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फ्रेंड्स, इसको समझने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्तों, कि वह जो कुंजी है सफलता की या सफलता का जो रहस्य है, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप में है। क्योंकि आप जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, और वो जो टॉपर है वो जानता है कि कैसे पढ़ना चाहिए और वो उस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस यही फर्क है। किताबें सिविल सर्वेंट नहीं बनाती हैं, आप सिविल सर्वेंट बनते हैं। और मित्रों, ये जो 15 दिन की क्लासेस हैं, सच पूछे तो केवल आपको कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से चीजों को समझना चाहिए, किस तरीके से एनालिसिस एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए, इसी को बताने वाली क्लासेस हैं। बताई जाएंगी, जितना जरूरी है सब कुछ दिया जाएगा। बस मेरी एक ही अर्ज आप सबसे है कि आप लेने के लिए तैयार होकर आइए। कम से कम ये जिंदगी के 15 दिन आप बिल्कुल अपने पूरी की पूरी जिंदगी से काटकर इस तरह से अलग रख दें कि ये हमारे साधना के दिन हैं, इसमें हमें पूरी तरह से साधना करनी है, फिर देखिए कि कुछ होता है या नहीं होता है। तो मित्रों, आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं और चलिए अब हम आते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पर। दोस्तों, कल के समाचार आपने सुने होंगे और आज हमारे पास न्यूज एनालिसिस करने के लिए काफी बातें हैं। पहली बात है फ्रेंड्स, आपने समाचार में सुना खासकर चुनाव में काले धन पर रोक को लेकर। फ्रेंड्स, इस पर हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि जब से नोटबंदी का सिलसिला शुरू हुआ है आप देख रहे हैं कि मैं लगातार इसके बारे में आपसे बातें कर रहा हूं। अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहूं तो आप मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब वो दिन दूर नहीं जबकि चुनाव आयोग ने कुछ रिक्वेस्ट की है सरकार से कि इन विषयों पर कानून बनाया जाए, वो पूरा होगा। इसलिए क्योंकि अब वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई दे रही, जिसको हम पॉलिटिकल विल कहते हैं। पहले बात तो सभी राजनीतिक दल करते थे लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी, वो केवल एक ऊपरी बात होती थी क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि ये कानून नहीं बनना चाहिए। हर कोई मानता है कि ये बनना चाहिए, जैसे हर कोई मान रहा है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में महिलाओं को 30% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। मान हर कोई रहे हैं, हो नहीं रहा है क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल बहुत बड़ी चीज होती है और मुझे अब वो पॉलिटिकल विल दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग ने अभी सुधार के लिए जो रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग चुनाव कराती है, चुनाव कराने से संबंधित अधिकार उसके पास है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार तो चुनाव आयोग के पास नहीं है। भले वो चुनाव से ही संबंधित कानून क्यों न हो, कानून बनाने का अधिकार हमारे संविधान ने हमारे संसद को दी हुई है और बट नेचुरली कि वो उसी के पास रहना भी चाहिए क्योंकि यही डेमोक्रेसी है। लोग कानून बनाएंगे, चुनाव आयुक्त कानून नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है, जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो यही है कि 2000 रुपए से ज्यादा का अगर कोई चंदा देता है राजनीतिक पार्टी को तो वो आप कह लीजिए कि ऑन अकाउंट होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। सीधी सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात। अभी तक वो जो सीलिंग है वो 20,000 है, 20,000 से अधिक के बारे में आपको जानकारी देनी होगी, उसको घटा करके 2000 तक करना चाह रहे हैं। मित्रों, मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि किस तरीके से जो चुनावी चंदा है वो भ्रष्टाचार की जननी है, इसके बारे में मैं आप लोगों से काफी बातें कर चुका हूं। यहां ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इसके लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करना पड़ेगा, जो 1951 में बना था और आपके सिलेबस में जनरल स्टडीज मेंस के सेकेंड पेपर में 1951 का जन प्रतिनिधित्व कानून स्पेशली मेंशन किया हुआ है। आपको वैसे भी उस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है, तो उसी में परिवर्तन की बात चुनाव आयोग कर रहा है। और ये नहीं कि चुनाव आयोग ने पहली बार इस तरह के सुधार की बात कही है, इससे पहले भी वो कई बार इस तरह की बातें कह चुकी है। तो मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कमिंग ईयर के लिए कि चुनाव में किस तरीके के सुधार किए जाने की जरूरत है, क्या आप सहमत हैं, नहीं है, कैसे किया जा सकता है ना, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप मानकर चलिए। दोस्तों, जो दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज थी वो खासकर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जो नदी जल विवाद होते हैं, सभी नदी जल विवादों के निपटारे के लिए एक स्थायी रूप से ट्रिब्यूनल बना दिया जाए, न्यायाधिकरण बना दिया जाए। आपको मालूम है कि इससे पहले बहुत से मामलों के लिए न्यायाधिकरण बनाए जा चुके हैं, जिसमें आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात तो कम से कम अभी बीच में काफी खबरों में आती है ना, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, राज्यों के भी अपने अधिकरण है। तो सरकार ने कुछ विशेष मामलों को निपटाने के लिए अलग से अधिकरणों की स्थापना की है, ये भी आपके सिलेबस में है, जिस पर आपको बहुत गंभीरता से तैयारी करनी चाहिए, मालूम ही होनी चाहिए, क्योंकि अब हम न्यायालय से आगे जाकर के अब अधिकरण के समय में प्रवेश कर चुके हैं और इनकी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। दोस्तों, जहां तक नदी जल विवाद की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अभी भी आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु और कर्नाटक में कितना जबरदस्त मुद्दा चला, उधर सतलज नहर के मामले में आप देख रहे हैं पंजाब और हरियाणा में कितने संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसको लेकर के सवाल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। 2013 में बकायदे सवाल पूछा गया था, आप किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके नेचर को समझ सकें। मित्रों, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए टॉपिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, होते तो हैं लेकिन टॉपिक ही सब कुछ नहीं होते हैं, ये कहना चाहिए। उस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, पूछे जा सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट आइडेंटिफाइंग द टॉपिक। टॉपिक से भी ज्यादा इस बात को जानना जरूरी है कि उससे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये अपन सॉल्व पेपर के जरिए केवल जान सकते हैं। 2013 मेंस के सेकेंड पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6, मैं आपको वो बता रहा हूं, उसे आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन पता लगेगा, क्योंकि जब तक आप नेचर ऑफ क्वेश्चंस नहीं समझेंगे तब तक एप्रोप्रिएट आंसर जो कहते हैं, जो सही आंसर दिया जाना जिसमें आपको नंबर मिल सके, और यही सिविल सर्विस की सबसे बड़ी चुनौती है, उसे आप फुलफिल नहीं कर सकेंगे। तो मित्रों क्वेश्चन है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ देता हूं, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा समझने में दिक्कत भी होती है, जो ट्रांसलेशन की लैंग्वेज है, क्या किया जाए। अंतर राज्य जल विवादों का समाधान करने में संवैधानिक प्रक्रियाएं समस्याओं को संबोधित करने व हल करने में असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है? विवेचना कीजिए, 200 शब्द। इंग्लिश में सुना देता हूं मित्रों मैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैव फेल्ड टू एड्रेस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इज द फेलियर ड्यू टू स्ट्रक्चरल और प्रोसेस इन एडिक्वेसी आर बोथ? डिस्कस 200 वर्ड्स। अब आप देखिए कि इसमें पूरा दिया हुआ है, दो चीजें आपको जाननी है कि हमारे संविधान में किस तरह की व्यवस्था की गई है, आपको मालूम होना चाहिए, और संविधान में व्यवस्था करने के बाद अगर व्यवस्था कर दी गई तो इंस्टीट्यूशंस आगे जो भी व्यवस्था कर दी गई है, एक्ट लाया गया होगा ना उसके लिए कुछ, तो एक्ट लाने के बाद जो काम हो रहे हैं वो ठीक से फिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों इन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है? आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिल्कुल आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज भी होनी चाहिए, करंट से बिल्कुल आपका सीधे सीधे जुड़ाव होना चाहिए, और फिर एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन का वो आंसर दे पाएंगे जो आपको सिलेक्शन लिस्ट के अच्छी पोजिशन पर आपका नाम दर्ज करा सके। तो मित्रों सिविल सर्विस की तैयारी हम करते कैसे हैं? जैसे हमने एक न्यूज सुनी, खत्म हो गया, आपने अखबार में पढ़ लिया, न्यूज में सुन लिया, तो आप याद रखिए कि न्यूज सिविल सर्विस की तैयारी नहीं करा रहा है, अखबार भी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए नहीं छप रहा है, मैगजीन छप रही है, ये आपके लिए नहीं छप रही, ये सबके लिए छप रही है। वहां से आपको केवल एक क्लू मिलता है, एक सूत्र मिलता है, और उस सूत्र को पकड़ करके फिर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं कि हाँ मुझे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मुझे अब इस टॉपिक पर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। याद करने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, एक समझदारी विकसित करनी है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप जो भी आपके पास पॉलिटिकल साइंस की किताब है उस पॉलिटिकल साइंस की किताब निकालेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि अंतर्राज्यीय संबंध का कोई चैप्टर है क्या, तो आपको इंटर स्टेट रिलेशंस का चैप्टर मिल जाएगा, क्योंकि नदी जल विवाद इंटर स्टेट से ही चल रहा है, दो राज्यों जो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में है। फिर जब आप उस चैप्टर को उठाते हैं तो आप देखते हैं कि नहीं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 262 में 262 में अंतर्राज्यीय जल विवादों के निर्णय के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। फिर आप उस व्यवस्था को पढ़ते हैं, व्यवस्था को पढ़ने के बाद कहते हैं कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया, उसके लिए फिर सरकार ने किया क्या? तो जब आप उसको पढ़ते हैं तो पता लगता है कि नहीं, सरकार ने किया, संसद ने हमारे दो कानून बनाए, एक तो नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में पारित किया और फिर 1956 में ही अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम पारित किया, दो एक्ट पारित किए, और इसी एक्ट के तहत, अंतर्राज्यीय जल विवाद एक्ट के तहत, ये बकायदे केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि वह अस्थायी न्यायालय के गठन कर सके, न्यायालय का गठन कर सके, और ये जो न्यायाधिकरण होगा, इस न्यायाधिकरण के जो निर्णय होंगे वो दोनों पक्ष को मान्य होंगे, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पता लग जाता है। फिर अब आप आते हैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर कि ठीक है ये सब कुछ हो गया तो फिर ये समस्या क्यों नहीं सुलझ रही है, तब आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि या तो ये प्रक्रियाओं की कमी के कारण हो रहा है या और दूसरे कारण क्यों नहीं सुलझ पा रही है, ये आपको अखबारों से मिलेगा, ये आपको अखबारों से इसकी जानकारी मिल जाएगी। जब आप न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स पढ़ेंगे, एडिटोरियल कमेंट पढ़ेंगे, तो आपकी वह क्षमता विकसित हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसलिए ये सफल नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों ये एक सिविल सर्विस की तैयारी करने का एक तरीका होता है जो मुझे ठीक लगता है, तब आप सब अपने अपने ढंग से तैयारी कर ही रहे हैं, मैं उन तैयारियों को, आपकी तैयारियों को ये मत मान करके चलिएगा कि मैं कहीं रिजेक्ट कर रहा हूं। मैं तो अपना तरीका जो मुझे बेहतर लगता है केवल वह आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मित्रों, दो न्यूज छोटी छोटी और थी। पहली तो न्यूज है कि आर्मी चीफ को लेकर के आप देख रहे हैं कि एक डिबेट आई है कि जो सीनियर मोस्ट थे उनको न करके दो तीन लोगों को शायद पीछे छोड़ करके जो फोर्थ पोजीशन पर थे उनको आर्मी चीफ बनाया गया, रावत जी को, विपिन रावत। यहां पर जो देखिए, जो चूंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और हम केवल सिविल सर्विस के ही पॉइंट से, प्रिपरेशन के पॉइंट से बात करते हैं दोस्तों, तो यहां एक जो बात आ रही है वो आ रही है सीनियरिटी को भंग करने की। सामान्यतः यही होता है कि जो सीनियर मोस्ट होता है उसे आप वो पद दे देते हैं। जैसे आप देखिए कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ना, टीएस ठाकुर जनवरी में न्यायमूर्ति रिटायर होंगे, तो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जो जस्टिस है वहां के वो चीफ जस्टिस बनाए जा रहे हैं। सामान्यतया इस सिद्धांत का पालन किया जाता है, लेकिन याद रखिए कि ये अनिवार्य नहीं है। अगर हम नियम कानून की बात करें तो ये अनिवार्य नहीं है, यानी कि थ्योरी ऑफ सीनियरिटी ऐसी पोजिशन पर काम नहीं करती है। सरकार को देखना होता है कि अभी कौन व्यक्ति उपयुक्त है। नो डाउट किसी, मतलब गवर्नमेंट ने साफ तौर पर कहा है कि जिनको इस पद पर नहीं लाया गया है वह भी योग्य हैं, लेकिन हमारी जो अभी जरूरत है, जिस एक्सपर्टीज की जरूरत है, उस एक्सपर्टीज के लिए हमें अभी ये ऑफिसर ज्यादा इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहा है। जैसा कि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हुआ, जो हमारे अभी फॉरेन सेक्रेटरी हैं। तो अभी हमारी जो क्राइसिस है, हमको मालूम है कि हमारी अभी क्राइसिस क्या है। न्यूज में आपने सुना कि अभी चीन और पाकिस्तान, इन दोनों को हैंडल करना हमारे लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती है। दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं और जो रावत जी जो हैं वो इन क्षेत्रों में काम कर चुके हैं जो भी इससे रिलेटेड है, तो उन्होंने उनको चुना। तो राष्ट्रीय हित किसी व्यक्ति के कैरियर के हित से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है, और इसीलिए सीनियरिटी के जो का ये जो सिद्धांत है ये कोई स्थापित सिद्धांत नहीं है, एकमात्र सिद्धांत नहीं है। बीच बीच में इसका उल्लंघन होता है, करना गलत भी नहीं है, बस उसके पीछे एक तर्क होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए। मित्रों, इसके बाद जो अंतिम जो छोटी सी खबर थी, लेकिन एक बड़ी खबर है जो सिविल सर्विस के लिए तो नहीं लेकिन स्टेट सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, कि भारत ने जो पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। लखनऊ में ये मैच हुआ था, फाइनल में उसने बेल्जियम को हराया और ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। हम सब अपने इस टीम को बधाई देते हैं। दोस्तों, न्यूज के बाद अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की एनालिसिस पर, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि हम लोग न्यूज़पेपर की एनालिसिस पर विस्तार से बात कर सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग। मैं चाहूंगा कि आप इस क्लिपिंग की कॉपी अपने पास रखें, अपनी फाइल में रखें, और वो है वैजयंत जय पांडा, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं ये। इन्होंने लिखा है कि कैसे संसद के लिए नए नियम बनाए जाने जरूरी हो गए हैं। आप देख रहे हैं, आपने देखा कि अभी संसद हमारी नहीं चल पाई, 15-16% काम हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, लाखों रुपए मिनट हर मिनट खर्च होते हैं, और डेमोक्रेसी, अगर संसद ही नहीं चलेगी तो डेमोक्रेसी का कोई अर्थ नहीं है। तो इन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं और उस सुझाव में ब्रिटेन का संदर्भ भी दिया है कि दूसरे देशों में किस तरह का नियम है, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन को खासकर चुना है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पूरा की पूरी डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, ज्यादातर ब्रिटेन से लिया हुआ है। इसमें कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने मेंशन कर रखे हैं, और सबसे बड़ा पॉइंट उन्होंने जो मेंशन किया है वो ये है कि हमारे यहां वो क्या होता है कि एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। वैसे स्पीकर लोकसभा को चलाने के लिए पूरे के पूरे तरह से उनके हाथ में होता है, वो अपने विवेक से लोकसभा को चलाते हैं, लेकिन जो भी एजेंडा होता है बिजनेस का, मेरे स्टूडेंट्स जो क्लास के रहे हैं उनको मालूम होगा कि मैंने इस तथ्य को समझाया था, तो वो सबके साथ सहमति से कि ठीक है अब ये किया जाएगा फिर ये किया जाएगा। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होते हैं जिसमें सभी राजनीतिक दलों के जो सीनियर लीडर्स होते हैं मेंबर होते हैं, तो उनकी सलाह पर चलता है। हमारे यहां कोई नियम नहीं है कि इस नियम के तहत ही चलेगा, सलाह पर चलेगा और इसके बाद फिर वो सब कुछ स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इस हंगामे का अभी एक बहुत बड़ा कारण यही रहा, क्योंकि जो दूसरे दल थे वो ये मान रहे थे कि जो विमुद्रीकरण पर जो बहस हो वोटिंग वाले नियम के तहत हो, जबकि सरकार कह रही थी कि नहीं, वोटिंग वाले तहत के नियम के तहत बहस नहीं हो सकती, और इसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा शीतकालीन अधिवेशन खत्म हो गया। तो ये नियम बन जाता, तो नियम बन जाने, अगर नियम बन जाता है तो फिर ऐसी स्थिति नहीं आएगी। तो बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं उन्होंने, और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए ऐसे ही सुझाव सबसे ज्यादा वजनी होते हैं, आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाले होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से है, फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसे एक साल पहले इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपको या तो एक क्लिपिंग्स अपने पास रख लीजिए या जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट कर लीजिए। इसके अतिरिक्त भी दूसरे क्लिपिंग्स हैं मित्रों, मैं उनकी बात नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपको न्यू क्लिपिंग्स वाले में अवेलेबल हैं ये सारी चीजें, आप देख लेंगे और अपने अपने ढंग से उनका इस्तेमाल कर लेंगे। दोस्तों अब मैं आता हूं अंतिम ईमेल के चरण पर, तो सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, पारुल मकवाना अहमदाबाद से, शाहवाज हुसैन, संदीप पांडे, अमित कुमार, अमृता कुमारी, प्रवीण शर्मा, नीरज पाल, लीलावती कुमारी वाराणसी, अभिषेक वैन सिंह, किरण शेत संधि पुणे महाराष्ट्र, राहुल, धीरज कुमार पटना, अतुल भटोरे खरगोन मध्य प्रदेश, और प्रांजल पारिक जयपुर से। आप सबका भी आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।